ॐ नमः सिद्धेभ्यः ॐ नमः सिद्धेभ्यः यार ज्ञानशक्तिकोटिसूर्यरण्णुमीरिदे ಮತ್ತು ಯಾರ ದಿವ್ಯ ಧ್ವನಿಯು ಲೋಕ ಹಿತವ ಮಾಡಿದೆ ಮೂರು ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಯಾರ ಕೀರ್ತಿ ವ್ಯಾಪ್ತವಾಗಿದೆ ಅಂಥ ದೇವದೇವರಲ್ಲಿ ನನ್ನ ತಲೆಯು ಬಾಗಿದೆ ಅಂಥ ದೇವದೇವರಲ್ಲಿ ನನ್ನ ತಲೆಯು ಬಾಗಿದೆ ಯಾರ ಜ್ಞಾನ ಪಾಪ ಕರ್ಮ ಗೆದ್ದು ಶುದ್ಧವಾಗಿದೆ ಅಮಿತವಾದ ಶಕ್ತಿಯಿಂದ ಸಕಲ ತತ್ವ ತಿಳಿದಿದೆ ಲೋಕದಲ್ಲಿ ವೀತರಾಗ ಪೂಜ್ಯ ಪದವಿ ಹೊಂದಿದೆ ಅಂಥ ದೇವದೇವರಲ್ಲಿ ನನ್ನ ತಲೆಯು ಬಾಗಿದೆ ಅಂಥ ದೇವದೇವರಲ್ಲಿ ನನ್ನ ತಲೆಯು ಬಾಗಿದೆ ಪಂಚಪರಮೇಶ್ವರಿ ಭಗವಾನ್ ಕೀ ಅಹಿಂಸಾ ಪರಮೋ ಧರ್ಮ ಕೀ ಆಚಾರ್ಯ ಗುರುವರ್ ಶ್ರೀ ವಿದ್ಯಾಸಾಗರ ಮುನಿ ಮಹಾರಾಜ್ ಕೀ ಆತ್ಮಕಲ್ಯಾಣಕಾರಿ ಧರ್ಮ ಕಾ ಪ್ರಕರಣ ಚಲ ರಹಾ ಹೇ ಜೋ ಸಚ್ಚಾ ಹೋತಾ ಹೇ ಉಸೀ ಕೋ ಆತ್ಮಕಲ್ಯಾಣಕಾರಿ ಧರ್ಮ ಕಹತೆ ಹೇ जिसका बाहरी रूप और अंतरंग रूप एक होता है, सही होता है, यथार्थ होता है, सत्य होता है, उसी धर्म को आत्मकल्याणकारी धर्म कहा है। इसका उपदेश जिनेन्द्र भगवंतों ने दिया है, आदिनाथ से लेकर महावीर भगवान तक के 24 तीर्थंकरों ने यथार्थ धर्म का उपदेश किया। जब हम आंतरिक धर्म को करने के लिए प्रयास करते हैं तो उस वक्त अपने जीवन में सम्यक दर्शन के साथ साथ सम्यक ज्ञान की उपलब्धि होना आवश्यक हो जाता है। जब बहिरंग धर्म को हम करने के लिए प्रयास करते हैं तो उसमें भी सम्यक दर्शन के साथ साथ सम्यक ज्ञान होना बहुत आवश्यक होता है, क्योंकि बहिरंग क्रियाएं अंतरंग उद्देश्य पर डिपेंड होने से अंतरंग उद्देश्य की यथार्थता के साथ बहिरंग क्रियाएं सफल मानी जाती हैं, यथार्थ मानी जाती हैं। इसलिए केवल बाह्य अनुष्ठान से ही कल्याण नहीं होता, बल्कि अंतरंग अभिप्राय को सुधार करके बहिरंग जो भी हम क्रिया अनुष्ठान करते हैं वे अनुष्ठान धर्म की कोटि में आकर कर्मों के संवर और निर्जरा के लिए कारणीभूत बनती हैं। बाह्य क्रियाएं अंतरंग की प्रतिछाया के रूप में होती हैं, जैसे पर्दे पर चित्र दिखाई देता है तो पर्दे का चित्र जैसे फिल्म में अंकित होता है उसी प्रकार पर्दे पर आता है। फिल्म अंतरंग की तरह है और पर्दा पर्दे का चित्र बहिरंग है। जैसा अंतरंग रहेगा वैसा ही बहिरंग प्रकट होगा। इसलिए सुधार किस में होना, अंतरंग में सुधार होना आवश्यक है। अंतरंग का जो चित्र है वो बदल गया, वो ठीक हो गया यदि गलत है तो। यदि गलत है तो वो अगर बदल गया तो बहिरंग पर्दे पर जो भी चित्र आएगा वो सही सही आएगा। तो प्रयास हमको क्या करना है, हमको प्रयास ये करना है, अंतरंग यदि मिथ्या ज्ञान है, असमीचीन ज्ञान है, अयथार्थ ज्ञान है, तो निश्चित बात है इस अयथार्थ ज्ञान के कारण से बहिरंग पर्दे के रूप में जो हमारी बहिरंग अनुष्ठान क्रियाएं होती है पर्दे के समान होती हैं, इन पर्दों पर भी उल्टा चित्र आएगा और ये कल्याणकारी नहीं होगा। अंतरंग ठीक है तो बहिरंग ठीक है, अंतरंग गलत है तो बहिरंग भी गलत निकलता है। इसलिए अंतरंग को ठीक करने का प्रयास, करने का उपदेश तीर्थंकर भगवंतों ने दिया है। तो उनसे यह प्रश्न किया जाए भगवान क्या करना चाहिए, तो वो कहते हैं किसी भी क्रिया को जो आप बहिरंग रूप से करते हो उसको करने से पहले अंतरंग उसके प्रति जो ज्ञान है बहिरंग का ठीक है या नहीं इसको समझने के लिए अंतरंग जो ज्ञान होता है उसको यदि ठीक करेंगे तो जीवन ही ठीक हो जाएगा। इसलिए प्रयास हमें ये करना है, ज्ञान के द्वारा क्रिया करना है, अज्ञान के द्वारा क्रिया नहीं करना है। सम्यक ज्ञान वस्तुतः स्वयं भी धर्म होता है और बहिरंग अनुष्ठानों को भी धर्म की कोटि में रख देता है। और भीतर में यदि सम्यक ज्ञान प्रकट नहीं हुआ है, जिनवाणी का ज्ञान उत्पन्न नहीं हुआ है, पैदा नहीं हुआ है, तो बहिरंग अनुष्ठान हम भले ही कुछ भी करते रहें वो मोक्ष के कारण, आत्मकल्याण के कारण, कर्मों के संवर व निर्जरा के कारण नहीं बन सकते। जैसा ही अपने को सम्यक ज्ञान की उपलब्धि होती है वैसा ही कर्मों का संवर भी होता है, निर्जरा भी होती है, और इन्हीं कर्मों के संवर और निर्जरा के साथ सम्यक ज्ञान भी हमारे लिए उपलब्ध होता है और उसके साथ सम्यक तो रहता ही है। क्योंकि सम्यक दर्शन को छोड़कर सम्यक ज्ञान नहीं होता और सम्यक ज्ञान को छोड़कर सम्यक दर्शन नहीं होता। यदि सम्यक ज्ञान नहीं है तो अवश्य मिथ्या ज्ञान है ये कहना पड़ेगा, और मिथ्या ज्ञान यदि है तो सम्यक दर्शन न होकर मिथ्या दर्शन है ये भी कहना पड़ेगा। तो सारा सुधार सबसे पहले सम्यक्तो में करना है कि सम्यक ज्ञान में करना है, ये विशेष विचार करने की बात है। सुधार कहाँ करना, ज्ञान में या दर्शन में? ज्ञान में। ज्ञान अगर जिनवानी के अनुसार ज्ञान हमारे लिए प्राप्त हुआ तो वह विवेक ज्ञान कहलाता है। उस विवेक ज्ञान के माध्यम से जिसकी हम श्रद्धा रखते हैं, उस श्रद्धा का विषयभूत देव, शास्त्र, गुरु, हमारे बहिरंग अनुष्ठान, सभी क्रियाएं, ये सम्यक ज्ञान के साथ होते हैं, जिनवाणी के ज्ञान के साथ होते हैं, तो यथार्थता की कोटि में आ जाते हैं। इसलिए ज्ञान प्रमुख है जीवन में, ज्ञान की प्रमुखता है, और ज्ञान के लिए ही बहुत मेहनत करना पड़ता है। सम्यक दर्शन स्वयं होता है, सम्यक चारित्र भी स्वयं आ जाता है, ज्ञान के लिए ही प्रयास करना पड़ता है। सम्यक ज्ञान के लिए इतना उद्यम करना पड़ता है, इतना प्रयास करना पड़ता है कि उसके आने के उपरांत जीव स्वयं संसार शरीर भोगों से विरक्त होकर अपने ध्येय में, अपने लक्ष्य में वह परमार्थ को रख करके चलने लगता है। परमार्थ हमारा लक्ष्य होना चाहिए, ध्येय होना चाहिए। परमार्थ यानी मोक्ष, परमार्थ यानी सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र रूप जो मार्ग है वो परमार्थ का मार्ग है, और इसके विरुद्ध जो मार्ग होता है उसका नाम संसार मार्ग है, जिसमें सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र नहीं रहते। मिथ्या दर्शन, मिथ्या ज्ञान, मिथ्या चारित्र होते हैं, और इनके वजह से न तो कर्मों का संवर होता है, न निर्जरा होती है, न विवेक ज्ञान रहता है, न चारित्र रहता है, सम्यक चारित्र कुछ नहीं रहता। तो इसी मार्ग को संसार मार्ग और परमार्थ के मार्ग को मोक्ष मार्ग कहा है। तो ये बातें ध्यान में रखते हुए अपने को समर्पित होकर के जिनवानी के प्रति चलना है, और जिनवानी के ज्ञान के माध्यम से ही आत्मकल्याण करने का लक्ष्य बनाना है। अपने क्रिया अनुष्ठान में जो भी क्रियाएं हों उनको हम चेंज कर सकते हैं, पर ज्ञान के बिना चेंज करेंगे तो वो चेंज होंगे ही नहीं। फिल्म नहीं बदलेंगे तो पर्दे पर चित्र दूसरा नहीं आने वाला, वो जो अनादिकाल से आ रहा था वही आएगा ना। फिल्म चेंज करना है, फिल्म चेंज करो या ना करो, फिल्म वही रखो, लेकिन फिल्म के भीतर जो चित्र है वो चित्र सम्यक ज्ञान के छप जाए, तो पर्दे पर भी सम्यक ज्ञान के चित्र आना शुरू हो जाएगा। तो चलते हैं, तीसरा प्रश्न था, धर्म किस लिए करना चाहिए, कैसे करना चाहिए और उसे करने से क्या लाभ। ये तीन प्रश्न इतने महत्वपूर्ण हैं, हमारी जिंदगी बदल सकती है, चलने का रास्ता बदल सकता है, नया जीवन आ सकता है, और यथार्थ इस जीवन के माध्यम से हमारा कल्याण प्रारंभ हो सकता है। इसका उत्तर पढ़ करके इसको जीवन बनाना हमारा कर्तव्य होता है, हमको बना लेना चाहिए। इसमें फायदा ही फायदा है, लाभ ही लाभ है, जरा भी हानि नहीं है। हमको क्रियाएं नहीं बदलना है, क्रिया ज्यों का त्यों वही क्रिया करना है, केवल दृष्टिकोण बदलना है। क्या दृष्टिकोण बदलना है? दो दृष्टियां हैं, एक भावनात्मक दृष्टि और एक कामनात्मक दृष्टि। सुन रहे ना, इंपॉर्टेंट बात, हमको भावनात्मक चलना है या कामनात्मक? भावनात्मक चलना है। कामनात्मक चलेंगे तो सम्यक ज्ञान होगा क्या? नहीं होगा। सम्यक दर्शन होगा क्या? नहीं होगा। और फिर जो हम क्रियाएं, बाहर की क्रियाएं करते हैं वो यथार्थता की कोटि में, सच्चाई की कोटि में आएंगे क्या? दूसरी दृष्टिकोण से करेंगे तो आएंगे क्या? कामना के दृष्टिकोण से करेंगे तो ये कामना वाली क्रियाएं यथार्थता की कोटि में आएंगी क्या? सत्य की कोटि में आएंगे क्या? नहीं आएंगे। तो यदि नहीं आते हैं तो हमारे लिए ये चिंता तो होनी ही चाहिए कि फिर उनको सत्य की कोटि में रखने के लिए क्या करें? विचार नहीं करना पड़ेगा क्या? करना पड़ेगा। और वो रास्ता पता चल गया तो उस पे चलने का प्रयास भी करना पड़ेगा। जब चलने का प्रयास करेंगे, दृष्टिकोण बदलेंगे, तो दृष्टि बदलने से सृष्टि बदल जाती है, इसमें कोई संदेह नहीं। धर्म किस लिए करना चाहिए? क्या बताया था? आत्म कल्याण के लिए धर्म करना चाहिए। धर्म आत्म कल्याण के लिए होता है, सांसारिक सुखोपलब्धि का साधन नहीं होता। कितनी बड़ी बात है ये। धर्म संसार सुख को उपलब्ध करने का साधन है ही नहीं। धर्म और धर्म की क्रियाएं, सम्यक दर्शन अंतरंग धर्म है, और सम्यक दर्शन की जो क्रियाएं होती हैं वो क्रियाएं भी संसार सुख पाने के साधन नहीं हैं। जैसे कि सच्चे देव, शास्त्र, गुरु और तत्व आदि का हमने श्रद्धान किया तो ये क्या हुआ? ये सम्यक दर्शन हुआ। और इसके उपरांत हम जब भी उपासना आराधना करेंगे, पूजा करेंगे, तो सच्चे देव शास्त्र की ही करेंगे वही। लेकिन अंतरंग दृष्टिकोण नहीं बदला है तो क्या परिस्थिति होगी? तो ये सच्चे देव शास्त्र, गुरु की पूजा आदि भी धर्म की कोटि में नहीं आएंगे, सम्यक दर्शन की कोटि में नहीं आएंगे। तो देव शास्त्र गुरु तत्व का श्रद्धान, इन सब का श्रद्धान करने से पूर्व अंतरंग दृष्टिकोण को परिवर्तन करना ही पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, कितना करना पड़ेगा? जो कामना के माध्यम से करते थे, अब भावना के माध्यम से करना, बस इतना ही करना है। सच्चे धर्म को प्राप्त करना कोई कठिन बात नहीं है, समझना कठिन है थोड़ा शुरुआत में, और एक बार समझ में आ गया तो करना कठिन नहीं पड़ता, बहुत सरल है। अंतरंग दृष्टिकोण बदल गया तो बाहर का दृष्टिकोण ऑटोमेटिक बदल जाता है। क्या नहीं बदलेगा? बदलेगा ना। कामना छूट गया तो क्या हो गया? भावना में आ गए, और भावना में आ गए तो भावना के माध्यम से जो भी करना पड़ेगा वो भावना से ही करना पड़ेगा। जब तक अंतरंग में भावना जीवित है तब तक बहिरंग अनुष्ठानों में भी धर्म जीवित है, और जब तक अंतरंग में कामना जीवित है तो बहिरंग अनुष्ठानों में भी अधर्म जीवित है। कामना के माध्यम से यदि हम सच्चे देव शास्त्र गुरु को भी समझते हैं, श्रद्धान करते हैं, और तत्व आदि का भी श्रद्धान कर रहे हैं, यदि अंतरंग में कामना है तो सम्यक दर्शन नहीं है। तो अच्छा धर्म, सच्चा धर्म करने के लिए हम क्या संकल्प करें, यह प्रश्न उठता है। कुछ संकल्प नहीं करना, एक ही संकल्प करना, धर्म के क्रियाओं को करते समय उनसे संसार शरीर भोगों की उपलब्धि की इच्छा नहीं रखना, वैभव की इच्छा, धन की इच्छा, पुत्र की इच्छा, वो इच्छा, ये इच्छा, इन्हीं इच्छा की पूर्ति के लिए हम सच्चे देव शास्त्र गुरु की आराधना के लिए भी प्रयास करते हैं, जाते हैं। कहाँ कहाँ जाते हैं? बहुत दूर दूर तक जाते हैं, समय शिखर जाते हैं, जैसे कल कहा था दिग्रस जाते हैं, सोमवार सोमवार जाते हैं। तो आप सोचिए कि यहाँ सोमवार ही जाना और सच्चे देव के पास ही जा रहे, फिर अंतरंग में दृष्टिकोण क्या है? कामना है क्या भावना है? कामना है। कामना यदि है तो दिग्रज जाना भी अधर्म कहलाएगा, और भावना यदि है तो दिग्रज जाओ या न जाओ, धर्म की क्रिया करो या न करो, भावना यदि जीवित है तो धर्म जीवित है, सम्यक दर्शन जीवित है, कर्म का संवर है, कर्म की निर्जरा है, मोक्ष है, सब कुछ है, अच्छा ही अच्छा है। लेकिन महाराज ऐसा धर्म करेंगे तो संसार सुख कैसे मिलेगा, ये प्रश्न नहीं करना। भावना से करना और कामना नहीं करना आप तो कह रहे हैं, लेकिन ये भौतिक सुख आदि हमको मिलते हैं ये भी तो गारंटी दो ना। हम तो इसी की वजह से भागते हैं, कहीं भी जाते हैं तो इसी वजह से जाते हैं, लेकिन इसके लिए क्या आपके पास उत्तर है? बताओ महाराज, जल्दी बताओ। धर्म तो करेंगे हम, भावना से करेंगे, उसके लिए भी तैयार हो जाएंगे, लेकिन उसके साथ ये भी गारंटी दो कि संसार सुख भी मिलता है, तब हम करेंगे। हाँ, जो बोलेंगे वही करेंगे, जो बोले सो होए। सवाल ये तो इतना विकल्प नहीं रखने की, इतना विकल्प रखने की आवश्यकता नहीं है कि संसार सुख मिलेगा या नहीं मिलेगा, क्या पता। यथार्थ धर्म में तो मांगने का मना करते हैं, कामना रखने को मना करते हैं, भावना से चलो कहते हैं, और ऐसा चलेंगे तो क्या पता सांसारिक वस्तु मिलेगी क्या नहीं मिलेगी, ऐसी शंका है क्या, संशय है क्या? यदि संशय है तो सुनिए, महावीर भगवान जो कहते हैं वो असत्य तो नहीं होता है ना, उनके वचनों पर विश्वास तो करोगे? तो भगवान की वाणी है, जो कामना को त्याग कर भावना का मार्ग पकड़कर अंतरंग को ठीक कर बहिरंग अनुष्ठानों में सब कुछ कर रहा है, कहाँ कहाँ जा रहा है, कचनेर भी जा रहा है, दिग्रज भी जा रहा है, और सब जगह कौन जाते हैं मालूम है ना, यहाँ नहीं मिला तो वहाँ मिला। दिग्रज के बाबा से कुछ नहीं हुआ तो कचनेर के बाबा से देखेंगे एक बार ट्राई करके, ऐसे भी लोग रहते पर ये भटकते रहते हैं, उनको विश्वास नहीं रहता अंतरंग में। आप सब जगह जाओ, एक जगह जाओ या अनेक जगह जाओ, मना नहीं है। महावीर भगवान कहते हैं कामना को छोड़ करके जाओ, कामना अगर छोड़ करके जा रहे हो तो जाना भी ठीक और नहीं जाना भी ठीक, जाने की भी आवश्यकता नहीं पड़ेगी। पुण्य का बंध होगा कि नहीं होगा, विश्वास है कि नहीं, महावीर भगवान के वचनों पर विश्वास है कि नहीं है? भावना के रास्ते से चलने से और कामना को त्यागने से पुण्य बंध होता है कि नहीं होता है? सातिशय पुण्य का बंध होता है या निरतिशय पुण्य का बंध होता है, कौन सा? सातिशय यानी उत्कृष्ट क्वालिटी वाला, निरतिशय यानी क्वालिटी नहीं रहती, छोटा मोटा रहता है, छोटा मोटा पुण्य। तो सम्यक दृष्टि भावना से सातिशय पुण्य का बंध करता है, और केवल जब जाता है तभी नहीं करता, क्षेत्रादि पर निरंतर करता रहता है। सातिशय पुण्य का बंध निरंतर होता है और पाप कर्म का संवर निरंतर रहता है। तो जब निरंतर रहता है तो आप सोचिए, निरंतर पुण्यबंद यदि होता रहता है तो ये पुण्यबंद क्या हमको संसार के सुखों को नहीं देता? क्या केवल मोक्ष ही देता? ऐसा है, पुण्य क्या देता है? हाँ, सातिशय पुण्य मोक्ष भी देता है, और सातिशय पुण्य संसार सुख भी देता है, संसार में सुखी भी रखता है। समझ में आ रही बात है? जो अभी तक किया है उसमें क्या परिवर्तन लाना है, ये प्रश्न है। क्रियाओं में परिवर्तन लाना है क्या? नहीं, क्रियाओं में कुछ परिवर्तन लाना नहीं। सोमवार सोमवार जाते थे, जाना ही है, और नहीं भी जाओ तो चलेगा, पुण्यबंद होगा ही होगा। जाओगे तो होगा, नहीं जाओगे तो भी होगा, निरंतर होगा, क्योंकि सम्यक दर्शन ऐसा नहीं कि क्षेत्र पर गए तो हो गया और घर आ गए तो छूट गया। सम्यक दर्शन ऐसा नहीं होता। विश्वास एक बार बैठता है, भावना के पथ पर चलने से हमारा कल्याण होता है, ऐसा एक बार विश्वास बैठ गया तो इतना जल्दी वो खत्म हो जाएगा क्या? ऐसा मोम का है क्या सम्यक दर्शन, जो कि कहीं गए से जाने से मिट गया और कहीं जाने से पुनः उत्पन्न हो गया? नहीं, जब तक सच्चा विश्वास जीवित रहता है तब तक सम्यक दर्शन भी नहीं छूटता। हाँ, सच्चे विश्वास में कोई कमी आने लग जाए तो सम्यक दर्शन भी छूट सकता है। और सम्यक तो और सम्यक ज्ञान, इन दोनों की उपस्थिति जब तक रहती है अंतरंग में, तब तक निरंतर पुण्य का बंध, पाप का संवर चलता ही रहता है। और सांसारिक भोग वैभव आदि जो मिलते हैं, अंतराय कर्म के क्षोभशम से मिलते हैं, बड़े भाग्य से मिलते हैं, पुण्य के उदय से मिलते हैं। लाभांतराय कर्म का क्षयोपशम होने से भोग वस्तु और उपभोग वस्तुएं मिलती हैं, लाभांतराय कर्म का क्षयोपशम होने से। और लाभांतराय कर्म का क्षयोपशम ना हो तो भोग वस्तुओं का और उपभोग वस्तुओं का लाभ नहीं हो पाता। इसके लिए एक उदाहरण देते हैं। मुनि महाराज आपके यहाँ आहार के लिए आए हैं, आप आहार दान देना चाहते हैं और वो दान ग्रहण कर रहे हैं, लेने के लिए आए हैं। मुनि महाराज को आहार का लाभ हो इसके लिए किस कर्म का क्षयोपशम चाहिए? लाभांतराय कर्म का क्षयोपशम चाहिए। और दाता पात्र के हाथ में अपना आहार दान दे दें, इसके लिए कौन सा अंतराय कर्म का क्षयोपशम चाहिए? दानांतराय कर्म का। इन दोनों का मिलन होने पर एक आहार देने की और लेने की क्रिया सिद्ध होती है निर्विघ्न रूप से। और इसमें से किसी एक को अंतराय कर्म का उदय आया, हमको लाभांतराय कर्म का उदय आया, तो आहार नहीं मिलने वाला है, अंतराय आएगा। और हमको लाभांतराय कर्म का उदय नहीं है, दाता को दानांतराय कर्म का उदय आया तो भी अंतराय आएगा। कोई ना कोई बाल निकलेगा, जीव निकलेगा, कोई ना कोई विघ्न आएगा, या लोटा गिर जाएगा, कुछ ना कुछ होगा। और ये होते समय सावधानी रखते हुए भी हो जाता है, ये कर्म का फल है। अंतराय कर्म वैसे पाप कर्म है, पांच प्रकार के अंतराय कर्म हैं: दानांतराय, लाभांतराय, भोगांतराय, उपभोगांतराय और वीर्यांतराय। दाता और पात्र के बीच में किस किस को कौन सा कर्म का उदय है? पात्र को लाभांतराय का उदय और दाता को दानांतराय का उदय। आदिनाथ भगवान को 6 महीने तक आहार नहीं मिला। ये लाभांतराय कर्म का उदय था, क्योंकि उन्होंने उसी जीवन में तीर्थंकर के जीवन में ही 2 बैलों को कुछ समय के लिए आहार उनको जो देना था उसमें प्रमाद हो चुका था। क्या प्रमाद हुआ था? उनसे काम तो ले लिया, ला करके बांधा और पानी घास खाने के लिए चाहिए, पर वो भूल गए, ये भी भूल गए, और वो खा सकते थे, सामने पड़ा हुआ था लेकिन खा नहीं पा रहे थे। और क्या भूल गए थे? घास पानी तो वहीं था, ये खाएंगे कह करके निकल गए, लेकिन क्या भूल गए थे? उसका जो मुंह पर मूसक लगता है ना, वो फसल न खा जाए, काम कराते समय खेत में उसको लगाया जाता है, तो मूसक को लगाया था और उसको खोलना भूल गए और अंतराय आ गया। तो कुछ समय बाद याद आया, अरे हमने तो मूसक निकाला ही नहीं, तो वापस आ गए, आकर के उसको खोल दिया। तब तक जितना समय मूसक के साथ वो खा नहीं पा रहे थे ना, तो लाभांतराय कर्म का उनको उदय था। किनको? बैलों को। और इनको दानांतराय कर्म का उदय था, इसलिए भूल गए। और ऐसा भूल करके ऐसे ही चले गए, और बाद में याद आया तो आकर के खोल दिया, तब वो घास पानी खा सके और ये भी घास पानी डाल सके। पर तब तक का जो समय था वो, उस समय में कर्म का बंध तीर्थंकर को हो गया था, आदिनाथ को। गृहस्थ अवस्था की बात है ये, गृहस्थ अवस्था में जानबूझ करके नहीं किया, फिर भी बंद होता है। जानबूझ के करने पर ही बंद होता है और जानबूझ नहीं करने पर बंद नहीं होता, ऐसा है क्या? ऐसा हो तो बहुत अच्छा होता, कोई जानने की आवश्यकता नहीं, जानबूझ कर करने की आवश्यकता नहीं, ऐसे ही करते चले जाओ, बंद नहीं होता। कर्म का बंद कैसे कैसे होता है देख लो, ज्ञात अवस्था में भी होता है, अज्ञात अवस्था में भी होता है। ज्ञाता ज्ञात भावाधिकरण वीर विशेषेभ्यस तद विशेष, दोनों अवस्था में होता है। पर ज्ञात अवस्था में करने पर तीव्र बंध होता है, अज्ञात अवस्था में करने पर मंद बंध होता है। लेकिन ये मंद बंध कहाँ है देखो, ज्ञात अवस्था में करते तो कितना होता? ज्ञात अवस्था में किया था क्या? नहीं, अज्ञात अवस्था में हो गया, भूलवश हो गया, तो भी 6 महीने तक अंतराय आया। फिर आहार में विघ्न आ रहा था क्या? नहीं, आहार में विघ्न आ रहा था। आपके लिए भी विघ्न आ रहा हो, कोई भी संकट आया हो जीवन में, हमको धन नहीं है, पुत्र नहीं है, संपत्ति नहीं है, ये सब ठीक ठाक मिले, ये भावना रहती है। भावना रहना अच्छा है, कामना आ गई तो अज्ञानी है जीव, जीव अज्ञानी कहलाता है। और अज्ञान के द्वारा ज्ञाता ज्ञात भावाधिकरण, ज्ञात भाव से और अज्ञात भाव से भी जब हम गलती करते हैं तो कर्म का बंध होता ही है। अज्ञान अवस्था में कामना के साथ हम धर्म करते हैं, क्या इस समय अशुभ कर्म का बंध नहीं होता? होता है। जीव का गुणस्थान कौन सा रहेगा उस समय? पहला गुणस्थान ही रहेगा, कामना के साथ यदि कुछ भी करे तो पहला गुणस्थान। यानी मिथ्यात्व गुणस्थान पहला गुणस्थान। मिथ्यात्व गुणस्थान में रहेंगे, कामना से करेंगे, और कामना रहित होकर के करेंगे तो सम्यक दर्शन, भावना के साथ करेंगे तो सम्यक दर्शन रहेगा। तो सम्यक दर्शन होने पर सारे अंतराय कर्म टल जाते हैं, और मिथ्या दर्शन रहने पर सारे अंतराय कर्मों का बंद भी होता है, विशेष बंद होता है। तो ज्ञात भाव से भी बंद होता है और अज्ञात भाव से भी बंद होता है। इन दोनों भावों में से न ज्ञात से बुरा काम करना चाहिए, न अज्ञात भाव से बुरा काम करना चाहिए, इन दोनों से ही बचना चाहिए। तो क्या करना, हम सीधा सीधा आपके लिए बता रहे हैं, ज्यादा घूम फिरा करके बताना ठीक नहीं है, सीधा सीधा बता रहे हैं। एक ही काम करो, कहीं भी जाओ वही काम करो, लेकिन भावना से करो, कामना को हटाओ, सारा काम ठीक हो जाएगा। और यदि ना हो तो मेरे पास आना, मैं न्याय करूंगा भगवान महावीर से। भगवान आपने कहा था कामना को छोड़कर भावना से करो तो धन संपत्ति भी मिलेगी और इधर परमार्थ भी सिद्ध होगा, आत्मा का कल्याण भी होगा, ऐसा कहा था। और इन्होंने ऐसा करके देखा, कुछ हुआ नहीं, ऐसा क्यों ये अन्याय? मैं पूछूंगा ना भगवान से, आपको विश्वास नहीं है तो मैं पूछ लेता हूं, पर आपको विश्वास है क्या? नहीं है तो विश्वास है तो कामना को छोड़ो, जाओ दिग्रस, कोई बात नहीं, वहां नरियल भी बांधो, मना नहीं करते हम, पर किससे? भावना से, कामना नहीं करना। और कोई भी मन में मनोकामना लेकर के यहां से नहीं जाना, भौतिक विषय संबंधी, धन संबंधी, परिवार संबंधी, रोग संबंधी, परेशान संबंधी, कष्ट संबंधी, इसको लेकर के वहां मत जाओ। ये ठीक हो इसलिए मैं बांध रहा हूं नरियल, कामना नहीं है तो भावना से हम इस उद्देश्य से बांधेंगे, हे भगवान भावना से बांध रहे हैं, भावना में तो कामना रहती नहीं है, और ये भावना सम्यक्तो का स्वरूप है, भावना ही सम्यक्तो है, और इस सम्यक दर्शन के माध्यम से मेरा आत्मा का कल्याण हो, मोक्ष फल प्राप्त ही फलम निरूपामिति स्वा। क्या सम्यक दृष्टि फल नहीं चढ़ाएगा? और चढ़ाने की जगह बांधेगा तो क्या फर्क पड़ता है, चाहे बांधो चाहे चढ़ाओ, कामना तो है ही नहीं। आपको तो वही फल मिलेगा जो सही है, उत्कृष्ट फल मिलेगा, चाहे बांधो चाहे रखो। और बांधना यदि अच्छा नहीं लगता है तो रखो, आप रोज रखते हैं, मंदिर में कहां बांधते हैं? बांधोगे तो भी वही फल है, और रखोगे अर्पण करोगे तो भी वही फल है, पर बांधने की क्रिया अच्छी नहीं लगती। क्यों? अज्ञानी जीव बांधते हैं और ज्ञानी जीव अर्पित करते हैं, चढ़ाते हैं। हाँ, मोक्ष की कामना करने से मोक्ष प्राप्त नहीं होता, इसको भावना से, कर्तव्य से ही करना पड़ेगा। कामना की जरूरत ही नहीं कहीं भी, लक्ष्य की जरूरत है। आपको संसार सुख चाहिए कि मोक्ष चाहिए? कौन सा लक्ष्य बनाना चाहते हैं आप? मोक्ष, मोक्ष का लक्ष्य बनाओ और कर्तव्य करते जाओ, उसमें न कामना की जरूरत है न भावना की जरूरत है, कर्तव्य करो। कर्तव्य नहीं करेंगे तो फिर नहीं मिलने वाला, कर्तव्य भी छोड़ के बैठेंगे तो नहीं मिलने वाला, मोक्ष नहीं मिलने वाला। हमारा लक्ष्य है तो लक्ष्य के प्रति पुरुषार्थ भी आवश्यक है, वो पुरुषार्थ तो करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा पुरुषार्थ में? बस इतना ही करना पड़ेगा, कामना को नहीं आने देना ही ये पुरुषार्थ है। पुरुषार्थ क्या चीज है? कामना को आने नहीं देना, पहरा देना। हे कामना, आना नहीं यहाँ, हम पहरा दे रहे हैं, यहाँ नहीं आना भीतर। तो यही पुरुषार्थ है, भावना को टिकाए रखना ही पुरुषार्थ है। और इस पुरुषार्थ में जो भी करते हैं वो सब कर्तव्य की कोटि में आता है। फिर मंदिर जा रहे हैं, कर्तव्य कर्तव्य है, हम कर्तव्य पूर्ण कर रहे हैं। किस लिए कर रहे हैं? तो मन की विशुद्धि को बढ़ाने के लिए कर रहे हैं। दूसरी बात, इसमें इस पूरे पुस्तक के इस प्रश्न के उत्तर में यही चर्चा की गई है। भावना से, ध्यान से सुनना, ध्यान से सुनना, भावना से जब मंदिर जाते हैं तो हम किस उद्देश्य जाएं, वहां जाकर के किस प्रकार रहें, क्या करें क्या ना करें। तो भावना से तो जाना कर्तव्य है, जाओ। वहां जाने के बाद अपनी मन की पवित्रता को विशेष रूप से बढ़ाओ, विशुद्धि बढ़ाओ, आनंदित हो, प्रसन्न हो जाओ, उत्साहित हो करके उस दर्शन की क्रिया को या पूजन की क्रिया को करो। उत्साह के माध्यम से जाओ और मन में इतनी विशुद्धि रहे कि विशुद्धि बहुत रहे, तो इससे ज्यादा आप कुछ नहीं कर सकते। विशुद्धि को बनाए रख सकते हैं। विशुद्धि को जब बनाए रखेंगे तो तीव्र क्वालिटी वाला पुण्य बनता है। देखो क्या करना और कैसे रहना, क्या करना, ये सभी बता रहे हैं हम, वैसा करना है। उत्साह के साथ जाओ, प्रमाद के साथ नहीं। कभी कभी क्या होता है, रोज जा जा करके थोड़ा थक जाते हैं ना, तो किसी दिन ऐसा होता है, चलो कर्तव्य तो करना है, चलो हाँ चलो, उत्साह भी नहीं और प्रमाद आ रहा है, तो उस समय पुण्य उत्कृष्ट नहीं बंधता, क्वालिटी वाला नहीं बंधता, तो मंद 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 बंधता है। और मंद मंद बंधा हुआ पुण्य मंद मंद ही फल देता है। कैसा देता है? उस जिस दिन जा करके प्रमाद के साथ पूजन किया था और वो पुण्य भी बंधा और उसका उदय भी आया और कुछ समय बाद उसका फल मिलने लगा। हम पुरुषार्थ बहुत कर रहे हैं लेकिन फल कम मिल रहा है, ऐसा होता है। पुरुषार्थ तो बहुत कर रहे हैं, फल कम मिल रहा है, ऐसा क्यों हो रहा है? ये प्रमाद के साथ पुण्य को बांधा था, आज वो फल दे रहा है, ज्यादा नहीं दे रहा है, पुरुषार्थ करने पर भी नहीं दे रहा है। तो पुण्य में जितनी शक्ति है, ताकत है, उतना ही देगा ना। ताकत वाला पुण्य बांधते तो ताकत से पुण्य का फल भी मिलता है। तो यहां अपने को ये समझना है, जब भी धर्म की क्रियाएं करते हैं तो प्रमाद से नहीं करना, आलस्य छोड़ करके करना, कर्तव्य से करना, भावना को टिकाए रख करके करना और उत्साह के साथ करना। जैसे आहार दान देते समय कितना उत्साह से देते आप, कितने उत्साह से पड़गाते, कितना सावधानी रहती है, अंतराय ना हो, कितने कितने बातें ध्यान में रखते हैं, जागृत रहते हैं। उस समय नींद आती है क्या, प्रमाद आता है क्या? तो आहार के टाइम में जो पुण्यबंध होता है वो उत्तम क्वालिटी का पुण्यबंध होता है। और इसलिए जीव कभी भूखा नहीं रह सकता। दूसरे को अन्न देगा तो अन्न भरपूर मिलेगा, यही है ना कर्म का फल, पुण्य कर्म का फल। और उस वक्त अंतराय कर्म का क्षयोपशम भी बढ़ता है, लाभांतराय का, दान देते समय दानांतराय का, पांचों प्रकार के अंतराय कर्म का क्षयोपशम बढ़ता है जब आप दान देते हैं। और क्षयोपशम बढ़ना अनिवार्य है, ये विशेष क्षोभ अभी बढ़ा के रखेंगे तो बाद में बहुत अच्छा फायदा मिलेगा इसका, दोनों तरफ फायदा मिलेगा। एक तरफ मोक्ष भी जल्दी मिलेगा और एक तरफ सांसारिक सुख भी फुल मिलेंगे, फुल। परसेंटेज फुल रहेगा, 100 का 100। तो दान के समय जैसे हम अप्रमत्त रहते हैं, उत्साहित रहते हैं, वैसे हर कार्य में उत्साह से करना। अपने कर्म कितने हैं? 6। देव पूजा, गुरुपास्ति, स्वाध्याय, संयम, तप और दान। ये 6 क्रियाओं को श्रद्धा से, भक्ति से, विशुद्धि से, उत्साह से करने पर उत्तम पुण्य का बंध होता है और अंतराय कर्म का विशिष्ट क्षयोपशम बढ़ जाता है। और पूर्व काल में जो बंधे हुए अंतराय कर्म थे वो सभी नष्ट होते हैं, यानी उनका क्षय होना प्रारंभ होता है। और वर्तमान काल में जो बंधना चाहिए अंतराय कर्म, उनका बंध रुकता है, बंधता है लेकिन ना के बराबर। कभी भी अंतराय कर्म का बंध रुकता नहीं किसी जीव को, ये निश्चित बात है। परंतु विशिष्ट बंध जो होना चाहिए वो तब होता है जब हमारे पास कामना रहेगी, प्रमाद रहेगा, अज्ञानी रहेंगे, बहुत सारी गलतियां अपने पास रहेंगे, तो कर्म का बंध भी विशिष्ट रूप से होता है, उसका फल विशेष रूप से मिलता है। जैसे आदिनाथ भगवान को फल मिला, अंतराय कर्म कितने दिन तक उनको सहन करना पड़ा? 6 महीने तक आहार नहीं मिल पाया। दूसरे को आहार में विघ्न डालने से स्वयं को भी विघ्न आएगा, निश्चित बात है, कभी न कभी आएगा। वो जैसे कोई जीव कुछ खा रहा है, आपने उसको छुड़ा दिया, जहर हो तो बात अलग है, छुड़ाना ही चाहिए। आहार जिससे पेट भरता है, जिससे वो सुखी रहता है, जिससे उसको जीवन मिलता है, आहार पदार्थ आदि को छुड़ाने से अंतराय कर्म का बंध होता है। जानबूझकर छुड़ा दिया या जानबूझकर किसी को आहार नहीं दिया तो उस समय अंतराय कर्म का बंध होता है, उसका छीनना नहीं। एक चींटी भी है, चावल को लेकर के वो जा रही है, या गुड़ को लेकर के, आपके घर में चींटियाँ बहुत होती है ना, होती है, अपने अपने जो आहार है वो कहीं ना कहीं मिल जाता है उनको और पकड़ करके ले जाती है, जाती, और उस समय आप क्या करते हैं? वो झाड़ू लगा देते हैं तो उसका छूट जाता है मुंह से। तो यहाँ पर ज्ञात भाव से करो या अज्ञात भाव से करो, आपको झाड़ू लगाने का उद्देश्य था लेकिन लगाते समय उसका आहार छुड़ाने के भाव तो नहीं थे, तो लेकिन आहार उसका छूट गया, तो निमित्त कौन बन गए उसके आहार के छूटने में? हम ही बन गए। और हम निमित्त बन गए तो जितने समय के लिए उसका आहार छुड़ाया, कर्म का बंध आपको हो चुका है। आपको कभी न कभी अंतराय कर्म उदय आएगा और आपका आहार छूटेगा, मिलता हुआ आहार छूट जाएगा। मुनि अवस्था में भी, साधु बनने के बाद भी कर्म फल देते हैं क्या? नहीं, तीर्थंकरों को भी दिया, आज भी मुनि महाराजों को अंतराय होता है। ये अंतराय क्यों होता है? ये कर्म की देन है, कर्म से ही अंतराय होता है। और अपन ने क्या किया होगा? तो झाड़ू लगाया होगा कभी न कभी किसी भाव में, वो अंतराय कर्म आज उदय में आया है और फल दे रहा है, आज भोजन करना नहीं दिया। तो किसी के आहार को छुड़ाना नहीं, यदि छुड़ाया है तो उसको देओ भी। गलती से अगर ऐसा हुआ है तो तुरंत आहार देना भी चाहिए उसको। झाड़ू लगाना है ना, लगाओ। मुंह में सभी चींटियां अपने अपने वस्तु ले जा रही थी, आहार की सामग्री, झाड़ू लगाना है लगाओ, जहां उनको छोड़ना है उस वस्तु को पुनः उनको दे दो, तो आपको अंतराय कर्म का बंध नहीं होगा। इधर छुड़ाया भी और इधर तुरंत दिया भी,
आदिनाथ भगवान ने ऐसा किया होता तो 6 महीने तक भटकना नहीं पड़ता उनको। इधर दिया भी, इधर भूल भी गए और तुरंत याद आता और तुरंत ही काम कर लेते, तो इतने लंबे समय तक अंतराय कर्म उनको नहीं बंधता और होता नहीं था। ये सब कर्म की देन है। देखो, हम सोमवार के दिन नरियल बांध करके वहां कामना करके आते थे, आते थे, अब कहना पड़ेगा आते हैं, ऐसा नहीं, आते थे, ऐसा ही कहूं क्या, आते हैं कहूं, आते थे, अब नहीं आ रहे हैं ऐसा। कल सोमवार था, सभी क्लास में थे, गए ही नहीं थे। तो कल गए नहीं थे तो मुझे अंतराय कर्म का बंध होगा क्या? सोमवार था, क्लास ले लिया और इनको विघ्न आया। नहीं, क्योंकि हमने ये नहीं कहा कि आप सोमवार के दिन दिग्रज मत जाओ, क्लास है मत जाओ, ऐसा नहीं कहा। इसलिए मुझे बंद नहीं होगा। आप स्वयं अपने मन से रुके हैं तो आपको भी बंद नहीं हुआ है, हम भी बंद से बचे हैं और आप भी कर्म बंद से बचे हैं। इसका फल हमको मिलने वाला नहीं है। बंधा ही नहीं तो क्या फल मिलेगा? कर्म बंधा हो तो फल देता है, बंधा ही नहीं। हम कामना से धर्म करते थे, अब कामना का धर्म कभी नहीं करना जीवन में, बस ये संकल्प ले सकते हैं। क्रिया सब वही करना, आपको बांधना हो बांधो या रखना हो रखो, कोई मतलब नहीं। क्रिया में कोई परिवर्तन नहीं लाना, पर दृष्टि में तो परिवर्तन लाओगे ना। क्या लाना है दृष्टि में परिवर्तन? कामना से नहीं जाएंगे, भावना से जाएंगे, और वस्तु भगवान से हम कभी भी मांगेंगे नहीं। वस्तु अपने आप मिलती, घबराने की जरूरत नहीं। भावना से सब कुछ करो, पूर्व कर्म निर्जरा को प्राप्त होते हैं, वर्तमान का पुण्य बंधता है और पूर्व का जो पुण्य रहता है उसमें अभिवृद्धि होती है, उत्कर्षण होता है। अभिवृद्धि का मतलब वो जल्दी फल देने लायक और पावरफुल बन करके जल्दी फल देने वाला हो जाता है। जैसे मानतुंग आचार्य को हुआ, आप विश्वास करते हैं भक्तामर पर कि मानतुंग आचार्य पर ऐसी घटना घटी थी और 48 ताले टूट गए थे, उस पर विश्वास है कि नहीं? उस पर विश्वास है, इसलिए तो हम कर रहे थे कि एक एक भक्तामर पढ़ करके हम भी कुछ प्राप्त करें। लेकिन कामना से करते थे कि भावना से करते थे? कामना से। लेकिन मानतुंग जैसे काम तो किया नहीं अभी तक, एक दिन भी नहीं हुआ वो। इसलिए असली फल जो जल्दी मिलना चाहिए और मिलना ही चाहिए वो नहीं मिल पाता, क्योंकि गलती कर रहे हैं हम, जैसा करना चाहिए वैसा नहीं कर पाते। ये सम्यक ज्ञान है। भगवान ने जैसा कहा है वैसा हम कर नहीं रहे थे, अब हम समझा रहे हैं कि भगवान ने जैसा कहा है वैसा करो और फल अगर नहीं मिलता है तो मेरे पास आओ, मैं दिला देता हूं। क्या चाहिए? धन चाहिए, संपत्ति चाहिए, कौन सी मनोकामना आपको चाहिए? मैं पूरी कर देता हूं, नहीं मिला तो मैं दे दूंगा। महाराज, आपके पास धन कहां से? मुझे विश्वास है भगवान के वचन ऐसे हैं और इससे बिन मांगे मोती मिले, मांगी मिले न भीख, ये सत्य है। सूक्ति, मांगने से कुछ मिलता नहीं, नहीं मांगने वाले को सब कुछ मिलता है, यही सत्य है। और इसी सत्य को भगवान ने भी बताया है। ऐसा सत्य, ये मार्ग, ऐसा सत्यता क्यों है ये पूछो तो उसका भी उत्तर है। देखो, जब हम कामना सहित जाते हैं, कामना सहित ही मांगते हैं, जब मन में कामना है तो मन पवित्र है क्या अपवित्र? अपवित्र। अपवित्र मन से पुण्य का बंध होगा क्या? नहीं होगा। अंतराय कर्म का क्षयोपशम बढ़ जाएगा क्या? नहीं बढ़ेगा। ये सत्य है क्या? नहीं है? यदि सत्य है, आप कहते हैं ये सत्य है, तो सत्य है ही, और भगवान ने जो कहा है वो असत्य हो ही नहीं सकता। आप कामना को छोड़ करके भावना से काम करके देखो, बिन मांगे ही मिलने लगता है। हाँ, ये बात अलग है कि जब मांगने का मांगा नहीं और मिलने का समय आया, उस समय में पुरुषार्थ तो आपको करना पड़ेगा। क्या पुरुषार्थ करना पड़ेगा? आपने मान के चलो कि धन की बहुत जरूरत थी अपने जीवन में। किसी दिन गए, सोमवार के दिन भगवान से कहा धन चाहिए, तो ये तो कामना हो गई, इससे तो मिलने वाला नहीं। इसलिए आपने क्या कर दिया? भावना से धर्म करके आए, मोक्ष फल प्राप्त है फलम निरूपम, श्रीफल चढ़ा दिया या बांध लिया, कहो चढ़ाया या बांधा, एक किया, इसमें से दोनों में से अच्छा कौन है? चढ़ाना अच्छा है क्या बांधना अच्छा है? देखो, बांधने पर भी वही फल मिलता है और चढ़ाने पर भी वही फल मिलता है, पर भावना से करना पड़ेगा। तो मान के चलो चढ़ाया, तो चढ़ाओ और अच्छा है, बांधना अप्रशस्त लगता है। वो बंद हो जाता है, नारियल को भी बंधित कर देते हैं, तब तक यहां बंधे रहना जब तक हमको नहीं मिलता। अब बेचारा नारियल भी कपड़े के भीतर और घुटन होगा उसको। आपको जब तक फल नहीं मिलेगा तब तक वो बंधा ही रहेगा, ऐसा ही है ना? जब तक फल नहीं मिलता तब तक बांध करके रखते हैं ना। हमको मालूम नहीं है, विशेष रूप से हम पूछ रहे हैं। हाँ, सही बात है। और नारियल खराब भी होते हैं, अंदर अंदर सड़ भी सकते हैं, खराब भी हो सकते हैं, सड़ते हैं। बांधना अच्छा नहीं है वास्तव में, चढ़ाओ। अब नारियल अंदर कैसे है कोई मालूम नहीं अपने को, वो सड़ा हुआ है क्या, पहले से अच्छा है क्या, वो कैसा है। उसमें पानी हो और बहुत दिन तक ऐसा रख दिया ना, तो सड़ भी सकता है, उसकी मर्यादा होती है। हाँ, अच्छा छोड़ देते, अच्छा कहाँ, हाँ 4 साल बाद देखो वहाँ क्या है। परिस्थिति ऐसी है, मान लिया आप, मान लो आप बांध करके आए और 1 साल में पूरी नहीं हुई, 2 साल में पूरी नहीं, 4th साल पूर्ण हो गई मान लो, तो 4th साल में जो मांग पूरी हो रही है वो अपने पुण्य से हो रहा है या वहाँ बांधने से हो रहा है? पुण्य से हो रहा है, अंतराय कर्म के क्षय, लाभांतराय कर्म के क्षोभशम से हो रहा है या ऑटोमेटिक हो रहा है या उसको बांधने से हो रहा है? नहीं, लाभांतराय कर्म का क्षोभशम से हो रहा है। आप किसको श्रेय देते हैं? 4 साल तक बांधा इसलिए 4th साल मिला, पर 4 साल तक वह अंतराय कर्म का क्षोभशम था नहीं इसलिए नहीं मिला। ये क्यों नहीं कहते? यही सत्य है, नारियल ने दिया ऐसा क्यों? नारियल क्या भगवान है? भगवान भी नहीं। नारियल क्या कामना है? कामना भी नहीं। कामना तो अपने मन में है, और कामना से करने पर भी मिलता है और नहीं करने पर भी मिलता है, पर मिलता है, जब भी मिलता है वो पुण्य के उदय से और लाभांतराय कर्म के क्षोभशम से ही वस्तु मिलती है, मनोकामना पूर्ण होती है। ये विश्वास करना मिथ्या है, असत्य है। क्या विश्वास करना कि 4 साल तक बांधे तो कामना पूर्ण होती है? तो किसी को 4 साल में नहीं हुआ और 5 साल में हुआ तो फिर वो असत्य हो गया 4 साल वाला। और 4 साल तक मैं बांधा रखूंगा, 4 साल के अंदर मिलना चाहिए ऐसा कहा, और 4 साल के अंदर नहीं मिला, ऐसा भी हो सकता है कि नहीं? हो सकता है। और 4 साल के अंदर मिल जाए ऐसा भी हो सकता है कि नहीं? वो भी हो सकता है, पर वो कर्म के क्षोभशम से, अंतराय लाभांतराय कर्म के क्षोभशम से हो रहा है या बांधने के कारण से हो रहा है? शौशम से ही हो रहा है। फिर बांधो या न बांधो, कर्म के अनुसार जब जो होना है वही होता है ना, फिर बांधना क्यों, ये प्रश्न उठाओ। बांधना व्यर्थ है या नहीं इसका विचार करो, व्यर्थ है क्या? नहीं व्यर्थ है। जब भी जैसा भी कर्म किया है, शुभ कर्म किया है, अशुभ कर्म किया है, बंधे हुए कर्म के अनुसार ही फल मिलता है, ये सत्य है क्या? नहीं। यही महावीर भगवान ने कहा है क्या? नहीं कहा है। फिर बांधने की क्या जरूरत है? अब धारणा बन गई। धारणा कैसी बन गई मालूम? उसने कहा हमने किया, क्योंकि उनको एक साल में मिल गया था और मुझे भले ही दो साल में मिले, लेकिन दो साल के भीतर मिलना चाहिए, ऐसा कहकर हमने भी उनकी तरह क्रियाएं की, अनुकरण किया। तो इसको कहते हैं लोक मूढ़ता। जब हम दूसरे को जो हुआ वही वैसा ही मुझे हुआ ऐसा संकल्प करके जो कुछ भी करते हैं उसको लोक मूढ़ता की कोटि में रखते हैं, और ये लोक मूढ़ता सम्यक दर्शन के, सम्यक दर्शन का दोष है। सम्यक दर्शन का दोष, सम्यक दर्शन के दोष कितने मालूम? 25। कौन कौन से? 8 मद दोष, 8 शंकादि दोष, 6 अनायतन और 3 मूढ़ता। 3 मूढ़ताओं में ये आता है। 3 मूढ़ता कौन कौन से? देव मूढ़ता, लोक मूढ़ता, पाखंडी मूढ़ता, ये 3 हैं। लोक मूर्ता यानी लोग जो करते हैं उन पर विश्वास करके उनकी क्रियाओं को स्वीकार करना, उनकी तरह करना शुरू कर देना। उन्होंने बांधा है इसलिए हमने भी बांधा, और आपको देख करके 10 लोग और बांधते हैं, 10 लोगों को देख करके और 40 लोग बांधते हैं। ऐसे बांधते बांधते वहाँ नरियल ही नरियल हो जाते हैं लेकिन जिनेंद्र भगवान ने कहीं ऐसा कहा है कि ऐसा बांधने पर ऐसा होगा, ऐसा किसी शास्त्र में आया है क्या? नहीं आया। शास्त्र में क्या आया है? नरियल चढ़ाओ ये आया है क्या? ये भी नहीं आया। बांधो ये आया है क्या? ये भी नहीं आया। तो क्या आया है? कामना को छोड़ करके कार्य करो, कोई भी करते हैं, दर्शन करो, पूजन करो, चढ़ाओ या नहीं चढ़ाओ, हर हालत में कामना रहित हो करके धर्म में लगे रहो, शुभ भावों में लगे रहो। इससे क्या होगा? इससे सब कुछ ठीक होगा। कुछ किए बिना भी सब कुछ होता है तो क्यों नहीं होना चाहिए? हाँ भावना से करो ना। जिन क्रियाओं को हम कामना से करते थे उन्हीं क्रियाओं को छोड़ना नहीं, भावना से करना शुरू करना। दृष्टि बदलना है, क्रिया नहीं बदलना। क्रिया तो फायदाजनक है परंतु कामना फायदाजनक नहीं। कामना से चढ़ाने पर भी नहीं मिलेगा और बांधने पर भी नहीं मिलेगा। कामना है तो मिलेगा ही नहीं, और भावना हो तो चढ़ाने पर भी मिलेगा और बांधने पर भी मिलेगा। और इसमें कौन सा प्रशस्त है उसको आपको सोचना है। अच्छा कौन सा लगता है? चढ़ाना अच्छा लगता है तो चढ़ाओ, जैसा भी अच्छा लगे, कामना को छोड़ के करना। यहाँ एक प्रश्न आया था, टाइम नहीं बच पाया। आहार दान क्या चौका लगाने में? हाँ, चौका लगाने में कितना महत्व है इसके बारे में थोड़ा संक्षेप में कहकर सबके, क्या लिखा है ये पढ़ो।